दोस्तों, भारत में हजारों लड़कियां हर वर्ष गायब हो जाती हैं और उन्हें देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया जाता है। गरीबी के कारण कई लड़कियों को मंडी में सब्जी की तरह बेच दिया जाता है। इन लड़कियों की कहीं पूछ परख करने वाला नहीं होता। ऐसी ही एक कहानी है जो आज मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। 13 वर्षीय ख्वाहिश, बहुत ही खूबसूरत, पढ़ाई में होशियार, अपने माँ बाप की अकेली संतान जो अपने परिवार के सभी सपनों को पूरा करना चाहती है। एक दिन ख्वाहिश अपने माता पिता से एक मेले में जाने की जिद करती है, पर उसके माता पिता को अपने मालिकों से छुट्टी नहीं मिल पाती। बेटी को उदास देख उसकी माँ भी उदास होती है और ये बात अपने साथ काम करने वाली सुधा से बांटती है।
सुधा बहन, आज मन बहुत उदास है।
क्यों, क्या हुआ?
अरे तुम्हें तो पता है मेरी बेटी ख्वाहिश कितनी समझदार बच्ची है, और हाँ, हमारी आर्थिक स्थिति को समझते हुए आज तक उसने कभी हमसे कोई जिद नहीं की, और आज जब पहली बार उसने मेले में जाने की बात की तो हम उसे ले जा नहीं सकते, बस यही सोचकर परेशान हूँ।
सुधा कुछ सोचती है और एकदम से बोल पड़ती है,
अरे कोई बात नहीं बहन, तुम नहीं तो उसकी सुधा मासी है ना, मैं उसे ले जाती हूँ।
अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम उसे अगली बार ले जाएंगे।
अरे बहन कैसी बातें करती हो, मैंने 6 महीने से कोई छुट्टी नहीं ली है, मैं अभी छुट्टी लेकर निकल जाती हूँ और ख्वाहिश को स्कूल से ले लूंगी और वहीं से उसे मेले भी ले जाऊंगी।
ममता कुछ सोचती है पर सुधा के बार बार प्यार से जिद करने पर मना नहीं कर पाती। ख्वाहिश का अभी बचपन भी नहीं गया था कि उस मेले में उसका अपहरण हो जाता है। अपने परिवार से दूर ख्वाहिश को जिस्म फरोशी के धंधे के लिए बेच दिया जाता है और उसका सामना ऐसे नर्क से होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ ख्वाहिश के माता पिता बहुत रोते हैं।
सुधा, अरे कैसे हो गया रे, मेरी ख्वाहिश कहाँ खो गई?
बहन ममता, मुझे माफ कर दो, ख्वाहिश बहुत जिद कर रही थी, उसे बड़े वाले झूले पर जाना है। मैंने उसे बहुत बहुत समझाया कि मुझे डर लगता है और मैं उसे अकेले नहीं जाने दे सकती, पर वो नहीं मानी। ममता बहन मुझे माफ कर दो, ख्वाहिश का ख्याल नहीं रख सकती
मेरी
मैं।
बच्ची।
बहन मुझे माफ कर दो।
ख्वाहिश के माता पिता ने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट भी लिखवाई लेकिन ख्वाहिश का कुछ पता ना चला। और दूसरी ओर उस अंधेरी दुनिया में सबसे पहले ख्वाहिश का सामना वहां के सबसे बड़े व्यापारी से होता है जो उसके साथ क्रूरतापूर्वक दुष्कर्म करता है। इसके बाद ख्वाहिश को उस मंडी में भेज दिया जाता है जहां जिस्म का सौदा होता है। ख्वाहिश की वहां पर राधिका नामक लड़की और ज्योति नामक मैडम से मुलाकात होती है। ज्योति इस धंधे का कामकाज देखती है। राधिका और ज्योति इस धंधे की बारीकियां ख्वाहिश को समझाती हैं ताकि वह वेश्यावृत्ति कर सके। ख्वाहिश इसके लिए तैयार नहीं होती, वह दुर्भाग्य को मानने से इनकार करती है। कई बार भागने की कोशिश करती है लेकिन नाकामयाबी ही उसके हाथ लगती है। बुरे और हिंसात्मक व्यवहार के बाद ख्वाहिश धीरे धीरे वेश्यावृत्ति को स्वीकार कर लेती है। अब यही उसका घर और यही उसका परिवार है। ख्वाहिश का बचपना इस गंदे बाजार में खो जाता है। तनाव से दूर रहने के लिए वह शराब की आदी हो जाती है। आखिरकार उसे आशा की एक किरण नजर आती है। उषा नामक एक सोशल वर्कर अक्सर इस धंधे में लगी लड़कियों से मिलने आती है। वह उन्हें प्यार, मिठाइयां और सहानुभूति देती है। धीरे धीरे ख्वाहिश और उषा का रिश्ता गहरा हो जाता है और ख्वाहिश रो रो कर उषा से अपनी सारी कहानी सुनाती है।
उषा दीदी, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, वापस अपने परिवार के पास। आगे पढ़ना लिखना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ और अपने माता पिता के हर सपने को पूरा करना चाहती हूँ।
ख्वाहिश बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारे परिवार को ढूंढ सकूं।
कुछ वक्त बीतने के बाद उषा ख्वाहिश को बताती है कि उसने ख्वाहिश का परिवार ढूंढ निकाला है। ख्वाहिश एक बार फिर भागने की कोशिश करती है, लेकिन कोठे पर काम करने वाला एक व्यक्ति उसे पकड़ लेता है और क्रूरता पूर्वक व्यवहार करता है। एक दिन ख्वाहिश के पास रोहन नामक कस्टमर आता है, जो कि उषा का दोस्त था। रोहन एक स्टिंग ऑपरेशन करता है और लड़कियों को छुड़ाता है। उन्हें सिर्फ एक गवाह की जरूरत होती है, जो उन व्यापारियों के खिलाफ अदालत में गवाही दे सके, लेकिन उन्हें एक भी गवाह नहीं मिलता। तब ख्वाहिश बिना डरे पूरी हिम्मत के साथ उन देह व्यापारियों के खिलाफ गवाही देती है, एक ऐसे हीरो की तरह जो डरपोकों की दुनिया में बहादुरी दिखाती है और बुराई पर अंत में विजय पाती है। ख्वाहिश अब अपने परिवार से मिली और उसने सब बताया कि कैसे सुधा ने उस शाम धोखे से उसे देह व्यापारियों के हाथ बेच दिया था। पुलिस ने ख्वाहिश का पूरा बयान दर्ज कर सुधा और उससे जुड़े लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया और अब मानव अधिकारों का हनन करने के जुर्म में उन पर उच्च न्यायालय द्वारा कार्रवाई चल रही है। दोस्तों, ख्वाहिश ने सब कुछ सहा, फिर भी उसने हार नहीं मानी। जिंदगी के हर गम भुलाकर अपने जीवन का फिर से एक नया अध्याय वो लिखना चाहती थी, लेकिन उसके अपने समाज और अपने ही गांव के लोगों ने उसका जीना उतना ही मुश्किल किया जितना कि पहले था। वो नजरें उठाती तो लोग उसे घूर रहे होते, कहीं से गुजरती तो अपनी ही कहानी लोगों की जुबानी सुनती। उसका अपना परिवार भी इन हालातों से जूझने लगा था, पर उसने अपनी नजरें लोगों की तरफ नहीं पर अपने ईश्वर की ओर लगाई। उसने हियाव बांधा और दृढ़ रही। वो लोगों की बातों से ना डरी और ना भयभीत हुई। वो जानती थी जो ईश्वर उन बुरे हालातों से उसे निकाल कर ला सकता है, वो इन हालातों में भी उसे ना छोड़ेगा। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। बस फिर क्या था, ख्वाहिश की लगन और मेहनत ने उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया और आज वो एक सामाजिक संगठन में अफसर है, जो अपने जैसे हालातों से लड़ने वाली लड़कियों की मदद करती है कि वो अपना जीवन नए सिरे से शुरू कर सके। अब ना ही केवल उसका परिवार उस पर गर्व करता है, पर पूरे गांव ने उससे माफी मांगी और उसे वो सम्मान दिया जिसकी वो हमेशा से हकदार थी।
दोस्तों, इस दुनिया में बहुत कुछ बदल रहा है, क्योंकि आजकल मानव ही मानव का व्यापार करने लगा है। क्या विडंबना है ना श्रोताओं, आज मानव ही मानव के महत्व को भूल गया। दोस्तों, जब तक हमारे अंदर के इंसान को हम बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ये मानव तस्करी होती रहेगी। हमें चाहिए कि कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों से बचे, जिससे मानव तस्करी में कमी आए। और इस तस्करी की समस्या ज्यादातर उन लोगों की वजह से होती है जिनकी मानसिकता ये है कि वो महिलाओं को, बच्चों को, मानव को महज एक खिलौना समझते हैं, महज पैसे कमाने का एक जरिया समझते हैं। अगर हम मानवता की बात करते हैं, हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उन बातों पर काम हम क्या करते हैं? इसके लिए जरूरी है कि हम सही मायने में एक मानव, एक योग्य मानव बने और इस तरह की चीजों को अपने समाज से हटाने में योगदान दे।
तो दोस्तों, अगर आप ख्वाहिश की जगह होते तो आप क्या करते? कहीं आपके आसपास भी तो कोई ख्वाहिश नहीं जो समाज की चिल्लाहटों में दब गई हो? दोस्तों, मैं चाहूंगी कि आप उसकी मदद करने का एक प्रयास जरूर करें। आशा करती हूँ आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और इससे आपको लाभ मिला होगा। हमसे अपने विचार और सुझाव साझा करने के लिए हमारा फोन नंबर लिख लीजिए 8826224477। जी हाँ 8826224477। अंत में इस कविता के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगी। चट्टान सी खड़ी रही मुसीबतें, मैं सागर की लहरें बन टकराता रहा। कठोर छाती धकेल देती वापस मुझे, बटोर हिम्मत मैं बार बार वापस आता रहा। धूल घुल गई जब सोच के आईने से, मेरी कोशिशों का असर रंग दिखाता रहा। टूट रहा था वो पत्थर भी धीरे धीरे, साध निशाना मैं वार हर बार बरसाता रहा। बिखर रहा था वह इस चोट से जर्रा जर्रा, देख साहिल मैं उस पार रास्ता बनाता रहा। कट गया पत्थर मेरी रुकावटों का, धुन उमंग के गीतों की मैं गाता रहा। चट्टान सी खड़ी रही मुसीबतें, मैं सागर की लहरें बन टकराता रहा। मैं सागर की लहरें बन टकराता रहा।